శ్రీమద్భాగవతం సాత్వాధ్యాయ శ్లోక సంఖ్య 1 ఈన అవతారేణ భగవాన్ హరినిశ్వర కరోతి కర్ణ రమ్యాణి మనోజ్ఞాని చ ప్రభు యణవత పైత్యరతిర్వితృష్ణ సత్వం చ శుద్ధ్యత్య చిరేణ పుంస భక్తిహరౌ తత్పురుషే చ సఖ్యం తదేవ హారం వద్మన్యసే చెత్. తాత్పర్య శ్రీల ప్రభుపాద్ ద్వారా ఈ చల్ రహా హై ఔర్ కుచ్ అధ్యాయ రహెంగే ప్రభుపాద్ కే తాత్పర్య వాలే ఫిర్ ఉన్కే శిష్య లిఖేంగే ఆగే కే తాత్పర్య భాషాంతర తాత్పర్య జాంతే నా తక్ ప్రభుపాద్ అనువాద్ కియే ఔర్ తాత్పర్య భీ లిఖే 10వే స్కంద్ కే హృదయానంద్ గోస్వామి మహారాజ్ గోపీ ప్రాణధాన్ ప్రభు ద్రవిడ్ ప్రభు ఇసి టీమ్ రహి ఉన్నోనే ఆగే బఢాయా ఇస్ భాగవత్ కే భాషాంతర ఔర్ తాత్పర్య కో. अनुवाद. राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली है. इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है. इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल. सामान्यतया हम भगवान की लीलाओं को सुनने में अनाकानी करते हैं, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वे स्वतः मन तथा कानों को सुहावनी लगती है. इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति, जो भव बंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाती है. मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है, और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं, मैत्री बढ़ती है. यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहे. इसने कहा, राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव गोस्वामी जी से. तात्पर्य, जैसा कि प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुखैया भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झपटी अधोरे. हमारा जगत माया है, जिसमें हम तरह तरह के भौतिक भोगों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए हम तरह तरह के शरीर धारण करते रहते हैं. भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया असदन नपि क्लेशद आस देह. जब तक यह नश्वर देह है, तब तक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक तथा आदि दैविक क्लेश मिलते रहते हैं. सारे कष्टों का यही मूल कारण है, जिसे कृष्ण भावनामृत को जागृत करके ही दूर किया जा सकता है. इसलिए व्यासदेव तथा अन्य मुनियों द्वारा प्रस्तुत सारा वैदिक साहित्य हमें कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया है. यह श्रवणम कीर्तन के जागरण से प्रारंभ होता है. श्रृण्वताम स्वकथाम कृष्ण. श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथ केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान करने के निमित्त है. कृष्ण के विभिन्न अवतार हैं, वे सभी अद्भुत हैं, अतएव वे हमारी उत्कंठा को जागृत करने वाले हैं. किंतु मत्स्य कूर्म तथा वराह जैसे अवतार कृष्ण के समान आकर्षक नहीं हैं. क्योंकि सर्वप्रथम हमें कृष्ण के विषय में सुनने के लिए कोई आकर्षण नहीं होता, इसीलिए ये हमारे कष्टों को कष्टों की जड़ बन जाते हैं। किंतु परीक्षित महाराज विशेषतया उल्लेख करते हैं कि बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाएं जो माता यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित करने वाली थी, विशेष रूप से आकर्षक है। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही पूतना, तृणावर्त तथा शक्टासुर का वध किया और अपने मुख के भीतर समूचा ब्रह्मांड दिखलाया। कहां पर? ब्रह्मांड घाट पर। इस तरह एक एक करके कृष्ण की लीलाएं माता यशोदा तथा समस्त ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्यचकित करती रही। कृष्ण भावनामृत को जगाने की विधि है आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15। कृष्ण की लीलाएं भक्तों से उचित रूप से सुनी जा सकती हैं। यदि वैष्णवों से कृष्ण लीलाओं के विषय में श्रवण करके थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जा सके तो वैष्णव के प्रति अनुरक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में ही रुचि रखते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज मनुष्यों के लिए संस्तुति करते हैं कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने, क्योंकि ये लीलाएं मत्स्य, कूर्म, वराह आदि अवतारों की लीलाओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। सुखदेव गोस्वामी से अधिक सुनने की इच्छा से महाराज परीक्षित ने उनसे अनुरोध किया कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं का आगे वर्णन करें, क्योंकि वे सुनने में सरल है तथा अधिकाधिक उत्सुकता जागृत करने वाली है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम्, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वशे नमः। नमाम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीराजोवाच एनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। यश्रणवतो अपैत्यरतिर वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। ये श्रीमद् भागवत कथा का कौन सा चौथा पांचवा दिन होना चाहिए, जहां तक ये कथा पहुंची है, दसवें स्कंद का प्रारंभ है और दसवें स्कंद बहुत विस्तृत है, अधिक अध्याय तो दसवें स्कंद में ही है और दसवें स्कंद का ये सातवां अध्याय और फिर ग्यारहवा और बारहवा और भी दो स्कंद है। तो जब राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे तो चौथा पांचवा दिन होना चाहिए और चार पांच दिनों से केवल राजा परीक्षित ही नहीं, समस्त संसार ही वहां लगभग प्रायः एकत्रित हुआ है। कई राजर्षि महर्षि देवर्षि वहां पहुंचे हैं। गंगा का तट है और गंगा भी बह रही है और ज्ञान या भक्ति की गंगा भी बह रही है, दो गंगा साथ साथ बह रही है। और जब से कथा प्रारंभ हुई है न तो भोजन न तो पानी की बूंद भी पिए है, ये सभी एकत्रित हुए कथा प्रेमी पिबत भागवतम रसमालयम। क्या पी रहे हैं? केवल अमृत पी रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सारे वह के रसिक रस ले रहे हैं भागवत कथा में। वही उनका खाद्य है, वही उन्हीं का पेय है। देह को भूल चुके हैं, मंत्र मुग्ध हुए हैं, मंत्र मुग्ध। सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकलने वाले श्रीमद् भागवत के ये मंत्रों ने उनको मुग्ध किया है। विस्मरण भी हम स्मरण कर रहे हैं। आपका चौथा दिन है, आज पांचवा दिन है, शायद वो गिनते भी नहीं होंगे। जैसे हम लोग ब्रज मंडल में होते तो पता भी नहीं चला सोमवार है बुधवार है क्या है, कौन सा दिन है, कालातीत हम लोग पहुंच जाते हैं, गुणातीत पहुंच जाते हैं। तो वे स्मरण भी नहीं कर रहे थे, कितने दिन से वह कथा सुन रहे हैं। या वे शायद सोचते होंगे अभी अभी तो कथा प्रारंभ हुई है, हम थके नहीं है। वयम तु न वित्रप्याम, हम थके नहीं है, न वित्रप्याम, तृप्त भी नहीं हुए हैं। जैसे भी वो पीते गए कथा अमृत तो उनकी तृप्ति बढ़ ही रही है या उनकी प्यास तृष्णा बढ़ ही रही है। वयम तु न वित्रप्याम, स्वादु स्वादु पदे पदे प्रतीक्षण आस्वादन लोलुपश्य। प्रतीक्षण पी रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। तो उसी कथा को कथा का नूतनीकरण उसको और नूतन बनाने हेतु राजा परीक्षित समय समय पर वक्ता को निवेदन करते हैं, हाँ सुनाते जाइए हम और सुनना चाहते हैं। और वो भी वद मन्यसे छेत, अगर आप समझते हो उचित समझते हो तो आप सुनाइए और सुनाइए। वद कहिए, हम सभी को कहिए, न प्रभु, प्रभु कहे, हे सुखदेव गोस्वामी, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, कथा सुनाइए हमें हमें। एन एन अवतारेन भगवान हरिरीश्वरः, किसकी कथा सुनना चाहते हैं? भगवान की। हरिरीश्वरः जो हर लेते हैं संसार के तापों को कष्टों को, उस ऐसे हर लेने वाले भगवान व्यक्ति को हरि कहा गया। हरि कष्ट को हरने वाले हरि, तो आप हरि हो, आप ईश्वर हो, भगवान आप नहीं हो, भगवान है सुखदेव गोस्वामी नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी भगवान कई स्थान पर उनको भगवान ऐसे संबोध किया है, क्योंकि ज्ञान का जो ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य है ज्ञान का ऐश्वर्य, ज्ञान भक्ति का भंडार है सुखदेव गोस्वामी, इसीलिए वे भी भगवान कहलाए गए हैं। लेकिन यहां तो भगवान हरिरीश्वर एन एन अवतारेन, जो वे भगवान हरि ईश्वर क्या करते हैं? एन एन अवतारेन करोति, करते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न अवतारों में, नाना अवतार मकरोत् अवतारम अकरोत् भुवनेषु, किंतु उसमें कृष्ण अलग है, कृष्ण स्वयं समभवत् परमहापमान्यो। वही बात तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे, हाँ हाँ अलग अलग अवतार है, कूर्म नरसिंह वामन वराह इत्यादि, लेकिन उन सभी में भगवान श्री कृष्ण की लीला अधिक आकर्षक है। यह कर्षति स कृष्ण, और उस कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं में भगवान की बाल लीला और भी मधुर है, ऐसी लीला जो करोति भगवान ने की, कर्ण रम्यानी, जो कान को बड़ी मधुर लगती है, कर्ण रम्यानी और मनोज्ञानी, और मन को भी सुहावनी लगती है, धन्यवाद, सुहावनी लगती है ये कथा। ना हमारे हमारे कानों को हमारे मन को बहुत भाती है, बहुत पसंद है ये कथा। इन इन अवतारेन, अलग अलग अवतारों के लिए, यहां तो अभी बाल लीला ही चल रही है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के प्रारंभ में, तो उसी लीला को अधिक सुनना चाह रहे हैं। राजा परीक्षित अकेले ही नहीं, इसीलिए ना हम सब सुनना चाहते हैं, हम सभी सुनना चाहते हैं। और उस कथा का महात्म्य यह आगे राजा परीक्षित सुना रहे हैं, कथा का महाभागवत कथा का महात्म्य, या भागवत कथा का फल ये है राजा परीक्षित के शब्दों में। यत श्रणवतो यत श्रणवतो, अगर वो कथा हम सुनेंगे, आप कथा सुनाओगे हम कथा सुनेंगे, तो अपैति दूर करेगी, कथा श्रवण से कुछ दूर होगा। क्या दूर होगा? अरति, कथा में रति नहीं है, कथा में आकर्षण नहीं है। तो आकर्षण बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? कथा का श्रवण करना होगा। हरे कृष्ण महामंत्र के जप में आकर्षण नहीं है, क्या जप छोड़ दे? फिर आकर्षण बढ़ेगा? कुछ कभी सोचते हैं भाव हमसे तो बहुत कोई आकर्षण नहीं है, अपराध भी हो रहे हैं हरि नाम में, इसलिए हम सोच रहे कि अब जप ही छोड़ दें, बहुत अपराध हो रहे हैं, हरि नाम में अपराध हो रहे हैं। ना अनुराग न अनुराग, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी शिक्षाष्टक में कहा, न अनुराग, भगवान आपने तो इतनी कृपा की है अपने नामों में, अपनी सारी शक्ति तो आप तो भर दिए हो, लेकिन न कालेन न तत्रापि स्मरणेन न काला, कोई विशेष काल परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होते हुए भी न अनुराग दुर्दैवम, ये मेरा दुर्दैव है, किसमें मुझे आकर्षण नहीं है, रति नहीं है, राग अनुराग नहीं है। क्यों नहीं है तो, या कैसे ला सकते? वह चैतन्य महाप्रभु ने वैसे कहा, तृणादपि सुनी जेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ऊपर कहे कोई रति नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन 1 2 3 करो, ये करो ये करो ये करो, फिर क्या होगा? कीर्तनीय सदा हरि। ये तब संभव होगा जब तृणादपि सुनीचे, सुनीचे ही न, नीच मतलब नीच नहीं, नीच बन के निम्न, सुनीचे न नम्र, तृणादपि तृण तृणादपि तृण से भी, तो नम्र बनेंगे और सहिष्णुता होगी और भक्तों के प्रति सम्मान की भावना, और अपने लिए कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं है, ऐसा भक्त कीर्तनीय सदा हरि कर पाएगा। तो वहां पर उन शब्दों में समझाया, तो यहां पर वैसे वही बात है। तो कथा में रति नहीं, अरति, अपैत्य अरति, अरति को रति में परिवर्तन करा देगी ये कथा। हमारे पास अरति है कथा के श्रवण से, अ को हटाया जाएगा और क्या बचेगा? रति बच जाएगी, रति उत्पन्न होगी। और ये अरति है क्यों? वितृष्णा, प्रभुपाद इसको मन के भीतर का मैल, वितृष्णा का शब्दार्थ प्रभुपाद लिखते हैं, मन के भीतर का मैल जो हमें कृष्ण भावनामृत में अरुचि उत्पन्न कराता है, कई प्रकार का मल, किसी कई प्रकार के सांसारिक आकर्षण, इससे वितृष्णा, कथा में तृष्णा नहीं है, तृष्णा वितृष्णा, कथा में तृष्णा नहीं है, संसार में तृष्णा है, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, जीव क्या करता है, बहिर्मुख, बहिर्मुख हो गए। हरि 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 वो बढ़ता है सम या इट वर्क्स। बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे। इस संसार में जीव बहिर्मुख होके भोग वांछा की वांछा, भोग की इच्छा रखता है। निकटस्थ माया तारे झापाटिया धरे, और फिर निकट ही जो माया खड़ी है तो झपाटिया उसका गला पकड़ती है, झट से गला पकड़ेगी उस व्यक्ति का। वितृष्णा, यस, वितृष्णा के कारण अरति है, सांसारिक भोग भोग वांछा के कारण, बहिर्मुख अवस्था के कारण, और उसी स्थिति को कहा है वितृष्णा, और उसी का परिणाम है अरति। कथा में आकर्षण नहीं है, रुचि नहीं है, तो इस अरुचि को अरति को कैसे हटाया मिटाया जा सकता है? अपैति, अपैति हटाना कैसे? यत् श्रवणवतः, भगवान की कथा के श्रवण मात्र से ये संभव होगा। सत्वम च, और उस व्यक्ति की सत्व में, शुद्ध सत्व में वो स्थित होगा। स्थितोस्मि अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध त्वत्प्रसादात् मया अच्युता। भगवत गीता को भगवान ने अर्जुन क्या कहे? प्रसाद कहे, त्वत्प्रसादात्। आपसे जो मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ, इस प्रसाद से क्या हुआ? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध। तो ये प्रसाद किसको कह रहे हैं? कौन सा प्रसाद? कोई महाप्रसाद दिए भगवान? हाँ, कृपा, किस रूप में कृपा? क्या दे रहे थे? उपदेश दे रहे थे, भगवत गीता जा रहे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। तो भगवान ने वहां तो अर्जुन को ही देखा, जा रहे देखो त्यारे कहो, तो अर्जुन सामने थे, उनको उपदेश सुनाए। और जब अर्जुन उपदेश सुने हैं, ये अंत में, अंत की बात, गीता का यह समापन ही है, तो भगवान के आभार मानते हुए, आभार प्रदर्शन, अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। आपसे जो मुझे कृपा प्रसाद इस गीता के रूप में प्राप्त हुआ, इसी से क्या हुआ? नष्टो मोह और स्थितोस्मि, मैं स्थित हो गया। स्थितोस्मि गत संदेह, इसीलिए मैं अब क्या करता हूं? करीषे वचनम तव, मैं अब आप जैसे कहोगे वैसे ही करूंगा। ऐसा करने के लिए जब व्यक्ति तैयार होता है तो समझना चाहिए कि उसको गीता समझ में आई है। अभी 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 करूंगा, ये नहीं कि अर्जुन ने कहा ठीक है अभी समझ में तो आ गई बात, अभी थोड़ा लंच वगैरह लेते हैं, फिर बाद में आफ्टरनून में देखा जाएगा, नया वगैरह हो जाएगा ना। अभी बात समझ में आई, करीषे, अब करीषे वचनम तव। ये पहचान है, भगवद गीता का कोई विद्यार्थी है तो उसने पास किया, समझा इस भगवत गीता के विषय वस्तु को, कैसे समझेंगे? करीषे वचनम तव, तैयार है भगवान की सेवा के लिए। अगर तैयार नहीं तो और पढ़ो, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ। तो सत्वम, जैसे अर्जुन ने कहा स्थितोस्मि, मैं स्थित हो गया, तो यह राजा परीक्षित भी वही कहे सत्वम च शुद्ध्यति, व्यक्ति शुद्ध होगा भगवान की कथा क्या करेगी, शुद्ध बनाएगी और व्यक्ति स्थिर होगा, स्थित होगा, कृष्ण भावना में स्थित होगा, स्थित प्रज्ञ होगा, स्थित प्रज्ञ द्वंद्वातीत गुणातीत लाभा लाभो जया जयो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय विजय जय पराजय, या लाभ हानि सुख दुख में समभाव वो स्थिति है, सत्व में स्थित होना मतलब वो स्थिति। सो उस स्थिति में उस मन की आत्मा की वो स्थिति, वहां पहुंचने में कितना समय लगे, अचिरेण अचिरेण पुंसा, ज्यादा समय नहीं लगता। राजा परीक्षित कह रहे कथा के श्रवण करते करते ही व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त करता है, अचिरेण चिरेण अचिरेण, अधिक समय नहीं। और भक्तिर हरो और भक्ति उत्पन्न होगी, भक्ति को प्राप्त करेगा, भक्तिर हरो हरि में भक्ति, हरो मतलब हरि में, किसमें भक्ति, हरि में भक्ति, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्य, वहां भी कहा है कोई भक्ति करेगा भगवान के तो ज्ञान और वैराग्य को भी वो प्राप्त करेगा। और उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, भक्तिर भवती नैष्ठिकी, भक्ति प्राप्त होगी, कैसी भक्ति, नैष्ठिकी निष्ठावान बनेगा। रुद्यंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुरेशता, वही बात अलग अलग शब्दों में कही जाती है भागवतम, वही बात रुद्यंतस्तो ही अभद्राणी मतलब ये जो वितृष्णा वगैरह है उसकी सफाई होगी। और देन नेक्स्ट आगे क्या, नहीं नहीं ना 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 हम लोग हर रोज कहते हैं नष्ट प्रायेश नष्ट प्रायेश अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया हम करेंगे तो होगा क्या, नष्ट प्राय प्रायेशु अभद्रेशु, जो जो अभद्र है अमंगल है नष्ट नष्ट होगा, सेम थिंग। और भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती, या हरौ भक्ति हरौ कहा है, हरि में भक्ति उत्पन्न होगी, और वहां कहा है भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, भगवती मतलब यहां भगवान, देवी भागवती की बात नहीं है, भगवान में भक्ति कैसे, भगवान उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक भगवान में भक्ति उत्पन्न होगी, निष्ठा निष्ठा वाली भक्ति मतलब वहां से फिर पीछे मुड नहीं है, वहां से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो भक्ति हरौ, ये सब करते करते जाएंगे, श्री भागवत की कथा का श्रवण करते करते हम लोग अरति को भी मिटा देंगे, उसके स्थान पर रति को प्राप्त करेंगे और फिर वितृष्णा नहीं रहेगी, संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहेगा। भगवान की कथा में ही तृष्णा, या उसी से तृप्त होंगे हम और सत्व में स्थित होंगे। और ये सब होगा अचिरेण, अधिक समय भी नहीं लगता है इस विधि में। और अंतिम फल क्या, भक्ति हरऊ, हरि में भक्ति उत्पन्न होगी। और तत्पुरुषे च सख्यम, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, भगवान की कथा सुनने से भगवान में तो भक्ति उत्पन्न होगी ही, और साथ साथ तत्पुरुषे, भगवान के जो पुरुष है, भगवान के जो लोग है, जो विष्णु जन है, विष्णु के हरि के जो जन है, हरि जन या तत्पुरुष, तत्पुरुषे भक्ति च च च कह के इनमें और इनमें, इन दोनों में भक्ति उत्पन्न होगी। वो दो कौन है, एक तो हरि है, हरिर हरौ भक्ति, हरि में भक्ति, और तत्पुरुषे च, और उनके पुरुषों में, उनके पुरुष मतलब महापुरुष महात्मा, या जो कथा हमको सुनाते हैं उनमें भी, या जो जारे रखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश करते हैं उनमें भी, तो भगवान और भगवान के भक्तों में, दोनों में भक्ति उत्पन्न होगी। और सख्य, सख्यम मैत्री, मित्रता का संबंध प्रस्थापित होगा इस कथा श्रवण मात्र से। तदेव हारम, और ऐसी कथा को क्या करना चाहिए, गले का हार, जो बात हमको अधिक प्रिय होती है उसको हम कहा रखते हैं, गले में रखते हैं। गले में स्त्री पुरुष भी एक दूसरों को जो पसंद होते हैं क्या गले में लटकाते हैं, तो हुआ तो गले में पुरुष को लटकाने के स्थान पर या गले में स्त्री को लटकाने के स्थान पर यहां क्या कहा गया है, ऐसे लटकाते हैं, स्त्री को प्रिय मानते हैं, पुरुष को कोई प्रिय मानता है तो उसी से वितृष्णा होती है, उसी से तो वितृष्णा है, मन का मैल है, और इसी के कारण ही तो अरति है भगवान में। तो इस प्रकार के जो हार हम पहनते हैं, स्त्री को ही हार बना के पुरुष पहन लेता है, अपैति, ये इसको हम लोग हटा पाएंगे। विदेश में तो लोग स्त्री और पुरुष इतने निकट रहते हैं, वो हार ही बनाते हैं, दूसरों को हार बना देते हैं। तब तो अपई थी, तो वो हारों को हटा के या क्या, तदैव हारम, हम उसी को, इस कथा को ही अपना कंठ का हार बनाना चाहते हैं, गले में हम उसको पहनना चाहते हैं। उसे पुनः देव तृणादपि सुनीचे न, जो श्लोक है उसको भी कहा है क्या करना चाहिए, उसका भी हार बना के पहनना चाहिए, इतना महत्वपूर्ण है। तो कथा का हार तदैव हारम, वो जो कथा है उसी को हम हार बनाना चाहते हैं, या भक्त बनाते हैं इस कथा को ही हार बनाते हैं, कथा की माला पहनते हैं गले में, जो प्रिय होता है इसको रक्षण करता है, रक्षा करता है इसकी, हाँ पकड़े रहता है जो प्रिय होता है इसको, तो इस कथा का, कथा की रक्षा, प्राण से भी प्रिय कथा, तो प्राण भी यहां है और फिर कथा को पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ते कभी, किसी प्रिय बात को पकड़ना है तो यहां पकड़ते हैं, क्या प्राण भी यहां है तो प्राण से भी प्रिय कथा है, भगवान है, इनको हम पकड़ते हैं, आलिंगन देते हैं, रक्षा करते हैं। और ये सब कीजिए वध मन्य से चेत, ये सब कथा कही अगर आप उचित समझते हो, अगर हम उस कथा के ये पात्र है ऐसा आप समझते हो तो कृपया सुनाते जाइए उन कथाओं को, इन इन अवतारेण भगवान हरिरीश्वर, भगवान की जो अलग अलग भिन्न भिन्न लीला कथा है, जो करोति करती है कर्ण रम्याणी, और मनो मन और कानों को जो आनंद देती है, लुभाती है, ऐसी कथा सुनाते जाइए और उस कथा का संक्षिप्त महात्म्य अपना साक्षात्कार ही सुना रहे, तो वक्ता जब सुनेगा तो फिर वक्ता जरूर कथा को आगे बढ़ाएगा, श्रोता सुनना चाहते हैं तो श्रोता को प्रोत्साहित, सुखदेव गोस्वामी को प्रोत्साहित कर रहे हैं राजा परीक्षित, तो कथा आगे बढ़ेगी। तो इस ये कथा वैसे प्रसंग हम लोग पुणे में कथा हुई है, ये दसवें स्कंद के ये जो अध्याय है, और बाल लीला हम सुने हैं पुणे में, फिर वृंदावन लीला का भी श्रवण किए हैं, फिर हम लोग मथुरा तक पहुंचे हैं, पहुंचे थे पिछले वर्ष, और भगवान ने क्या किया, कंस का वध किया, यहां तक कथा भाग पूरा हुआ है। अब वहां से आगे कथा इस वर्ष होगी, भगवान मथुरा में जरासंध के साथ युद्ध होगा, पुणे में घनघोर युद्ध होगा, हाँ। कितने वर्ष चलेगा युद्ध, 18 वर्ष, तो कथा भी 18 वर्ष, उसके वो युद्ध के पहले कृष्ण और बलराम मिलेंगे, वसुदेव और देवकी को मिलेंगे, बलराम तो मिले ही नहीं थे, एक गर्भ से दूसरे गर्भ पहुंचाए गए थे बलराम, और कृष्ण कुछ कुछ मिनटों के लिए ही थे वसुदेव देवकी के साथ, तो ये दोनों वसुदेव और देवकी को मिलेंगे, वो प्रसंग है। फिर गर्गाचार्य उनको यज्ञ पवित्र दीक्षा संस्कार होंगे, फिर अब तक अध्ययन नहीं हुआ था, अब तक तो गोचारण ही होता रहा, फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ था, अभी पढ़ाई प्रारंभ होगी। कृष्ण और बलराम जाएंगे, सांदीपानी मुनि के आश्रम जाएंगे, 64 दिनों में 64 कलाएं सीखेंगे, 64 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, ये सब प्राचीन और शाश्वत ज्ञान है, ये नहीं कि अभी ये कुछ नया ज्ञान अब बन रहा है, पढ़ाया जा रहा है विश्वविद्यालयों में, पहले नहीं था, भगवान पढ़े थे 5000 वर्ष पूर्व कई प्रकार। तो वहां से उज्जैन से, अभी उस समय का नाम अवंतीपुर था, वहां से भगवान लौटेंगे और गुरु दक्षिणा भी होगी, उसके लिए जाएंगे प्रभास क्षेत्र, जाएंगे भगवान कृष्ण और बलराम, और शंखासुर का वध होगा, शंख जो समुद्र में था, और फिर भगवान यमलोक जाएंगे, अपने गुरु के पुत्र को वापस ले आएंगे, वही दक्षिणा है, फिर मथुरा लौटते हैं, तो फिर जरासंध के साथ युद्ध होगा। 18वीं बार भगवान उस युद्ध में कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाएंगे, तो जरासंध क्या कहेगा, ए रन छोड़, तो वही रणछोड़ राय जब पहुंचेंगे, गुजरात पहुंचेंगे, तो उनकी पूजा होगी। एक ने कहा रणछोड़ कही का, तो द्वारका में क्या कहेंगे, रणछोड़ राय की स्वागत है आपका। फिर वहां पहुंचते ही वैसे पहली लीला है रुक्मिणी हरण लीला, तो भगवान महाराष्ट्र आएंगे, सेंट्रल इंडिया, कुंडीनपुर जाएंगे, बलराम भी वहां पहुंचेंगे रुक्मिणी हरण के साथ, द्वारका ले जाएंगे, विवाह होता है रुक्मिणी द्वारकाधीश की, फिर और भगवान के 16108 विवाह, उसकी कथा है। बीच में उद्धव जाएंगे, भगवान जब लौटते अवंतीपुर से मथुरा आते हैं, तो उद्धव को भेजेंगे वृंदावन, ब्रजवासियों को मिलेंगे, गोपियों के साथ उनकी मुलाकातें होगी, और ये अंत में हम लोग सभी अध्याय तो नहीं करेंगे, तो वृंदा मथुरा की लीला, अवंतीपुर लीला, बैक टू मथुरा, द्वारका लीला, ये नारद मुनि जाते हैं भगवान के घर घर जाते हैं और देखते हैं भगवान की लीला का, देखते हैं और फिर उनको सुनाते भी हैं, नहीं तो हम लोगों को कैसे पता चलता भगवान की लीला का। नारद मुनि अगर भेंट नहीं देते, उनके भगवान के घर नहीं जाते, तो वे जाते हैं और फिर समझते हैं भगवान के कई सारे कार्यकला भगवान के, तो वहां तक लीला, ये विषय है सायंकाल के लिए, सायंकालीन कथा। फिर प्रातःकाल भी भागवत, चैतन्य भागवत का सोच रहे हैं, सायंकाल को भागवत और प्रातःकाल को भी चैतन्य भागवत। या बाल लीला चैतन्य, बाल लीला भी हो सकती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।